من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن کریم کی ان ماہ مبارک کی مناسبت سے قرآن کریم سے موضوعی آپ کے سامنے آیات کریمہ کی شرح و تفسیر پیش کی جا رہی تھی. گمان اور خوش فہمیاں قرآن کریم کا ایک تفصیلی موضوع ہے. اس حوالے سے ہم گزشتہ ماہ مبارک کی ان بابرکت و عظیم راتوں میں بعض گمانات جو قرآن نے تعارف کرا ہیں ان پہ قلیل مقدار کا تدبر کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں. ان میں پہلا ہمارے پاس جو گمان تھا جس کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، وہ انسان کی خلقت کے حوالے سے گمان ہے کہ انسان عبث اور لغو پیدا ہوا ہے یا یہ کائنات عبث اور لغو خلق ہوئی ہے. قرآن نے شدت سے اس کو رد کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، اور بامقصد حکیمانہ اور مدبرانہ اس کی خلقت کا ہدف کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد دوسرا گمان جو ہم نے مطالعہ کیا اسی دوران، وہ انسان کا آزمائش کے بغیر جنت میں داخل ہونا ہے. اسی طرح سے ایک اور گمان جو ہم نے قرآن کی آیات میں مطالعہ کیا کہ انسان اپنے وجود میں یہ تصور کرتا ہے کہ وہ، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہمارے پاس تھا، کہ گناہگاروں سے، مجرمین سے مومنین والا سلوک اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی جو مقام اور منزلت مومنین کی اللہ نے قبر میں اور جنت میں قرار دی ہے، گناہگاروں کو بھی ادھر ہی اللہ تعالیٰ رکھے گا، جبکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے. انسان اپنے طور پہ جیسا بھی یہ گمان کر لے، اور شفاعت اور اسی طریقے سے جو دیگر بخشش کی آیات روایات ہیں، وہ جب تک ان محکم آیات سے سازگار اور عدل الہی سے سازگار نہ قرار پائیں، تب تک ہمارے لیے وہ مقام توقف ہوگا کہ اس جگہ پہ ہم توقف کریں گے. لازم ہے کہ ہم شفاعت کے نظریے کو، توبہ اور استغفار کے نظریے کو ہم سازگار کریں ان مجموعہ آیات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہگار وہ مومنین اور مقربین کا درجہ بغیر کسی ضابطے، بغیر کسی شرط اور بغیر کسی رجوع کے وہ حاصل کر لے. ہاں اگر گناہگار پلٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ یہ کسی مقام کی اوپر فائز ہو سکے. لیکن جو شرائط شفاعت نہیں رکھتا، اس کے لیے شفاعت نہیں. جو شرائط جنت نہیں رکھتا، اس کے لیے جنت نہیں ہے. جو شرائط توبہ اور استغفار نہیں رکھتا، اس کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے. پھر ہم نے گزشتہ درس میں یہ مطالعہ کیا کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور اپنے اعمال کو بہترین اعمال تصور کرتا ہے. یہ جو گمان اس کے ذہن میں ابھرتا ہے، در حقیقت شیطان ہے جو بڑا مزین اور خوبصورت کر کے اس کے سامنے تصویر کشی کر دیتا ہے. اور شیطان آتا اسی رخ سے ہے جس رخ سے فریب کھا سکتا ہے. ممکن ہے کہ ایک شخص مال ہے، خاتون ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، اس سے فریب نہ کھائے، لیکن عبادت سے، کسی نہ کسی رخ کی عبادت سے، مثلا عالم کے پاس عالم بن کے، عابد کے پاس عابد بن کے، عزادار کے پاس عزادار بن کے، حاجی کے پاس حاجی بن کے، اس طرح سے زائر کے پاس زائر بن کے آ سکتا ہے. لہذا وہ اس رخ سے فریب دیتا ہے جہاں سے انسان غافل ہے، جو انسان کا ضعیف پہلو ہے. اس لیے بہت بیداری اور چکنا ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح کہ آیات و روایات سے جیسا کہ استنباط ہوتا ہے کہ سخت ترین جانی، خطرناک ترین دشمن سے انسان جب مورچہ لگا کے بیٹھتا ہے، تو تھوڑی سی غفلت اسے پتہ ہے کہ مجھے نابود کر سکتی ہے. اسی طریقے سے شیطان کے پاس بھی مورچہ لگا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی غفلت اسے، انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. لہذا اس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ہدایت یافتہ اس وقت ہے جب معیار ہدایت پائے. عمل صالح اس وقت کہلائے گا، یا ایک اچھا عمل اس وقت کہلائے گا جب اس عمل میں عمل صالح کی شرائط پائی جائیں. सिर्फ ज़ाहरी तौर पे मुशाबहत और ज़ाहरी तौर पे इंसान का मुमासलत ये सबब नहीं बनती कि हम कह दें कि इसका जो अजर है उसका भी वही अजर है। मसलन अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लश्कर में अफराद जो मौजूद थे वो सारे के सारे अब जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सब अफराद को एक कैटेगरी पे नहीं रखेंगे, इन्हीं में से कुछ खवारिज बने, इन्हीं में से कुछ मुनाफिक थे, इन्हीं में से मोमिनीन भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर भी इसी तरीके से तश्कील पाता था, आयात रिवायात शिया सुन्नी दोनों मुत्तफिक हैं कि उनमें मुनाफिकीन भी थे, उनमें मोमिनीन भी थे। इसी तरीके से ये तकसीम चलती रहेगी, शकी शकावत के साथ इस दुनिया से गुजर जाए और सईद सआदत के साथ इस दुनिया से गुजर जाए। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि इन्ना सईकुम लशत्ता, कसम उठा कि कुरान ने तकरार से कसम उठाई और कहा कि तुम्हारी कोशिशें जुदा जुदा हैं। ज़ाहरी अमल एक जैसा मुमकिन है, कोशिशें जुदा जुदा हैं। ये भी हो सकता है ज़ाहरी अमल ही जुदा जुदा हो, क्योंकि इस आयत करीमा में सूरतुल आला की सूरतुल लैल की ये आयात है, इन आयात में जिसका तस्करा है वो एक वाक़े की तरफ इशारा है, किसी और मौरिद में पढ़ेंगे। उधर ज़ाहरी अमल भी दोनों का जुदा है, लेकिन कोशिश जो है उसके मुताबिक इंसान के लिए नतीजा निकलता है, किसकी क्या कोशिश है। फिर हमने इस आयत में मुलाहिज़ा किया कि अल्लज़ीना ज़ल्ला सईहुम फ़िल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में बहुत सारों की कोशिशें गुमराह हो जाती हैं, गुमराही से बचाना उसे लाजिम है। मसलन मुमकिन है कि एक शख्स पढ़ाई की गरज से एक जगह आया लेकिन अब वो पढ़ नहीं रहा, इसकी कोशिश गुमराह है। जो भी काम करता रहे इसने अपनी कोशिश हयात दुनियावी में गुमराह कर ली, यानी आया वो तालीम की गरज से था, आया वो मसलन तालिबे इल्म बनने था, लेकिन अब उसने कारोबार शुरू कर दिया, अब उसने कोई और काम इधर उधर के शुरू कर दिए। ये शख्स तालिबे इल्म नहीं है, इसने अपनी खुद नीयत अल्लाह ताला के लिए तालीम हासिल करना चाहता था, अपने नफ्स को इल्म से मुनव्वर करना चाहता था। अब इसने जब अपनी नीयत और अपनी कोशिश को खुद इन्हराफ में डाल दिया, राह से हटा दिया, तो अभी हयात दुनियावी में जो भी करता रहे उसके लिए वो बेमकसद या गुमराह कुन सूरत करार पाएगी। वो बेशक ही समझता रहे, वहुम यहसबून अन्नहुम युसइनून युहसिनून सुनआ, वो यही गुमान करते थे कि हम बेहतरीन अमल अंजाम दे रहे हैं। इसके ऊपर बहुत तवज्जो हमें देनी चाहिए, इसलिए कि जिस अमल के लिए वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ है उसी की तरफ पूरी तवज्जो रखे, यानी उसको असल करार दे, उसके बाद अगर कोई चीज़ सादिर हो रही है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़ल्ला सईहुम फ़िल हयात दुनिया, अल्लाह को छोड़ के दूसरों के लिए उसने काम शुरू कर दिया, गैर अल्लाह के लिए उसने नीयत को अपने मोड़ दिया। तो खुलासे कलाम कल हम इसका जायज़ा ले चुके हैं, आज हम जिस गुमान का आज जायज़ा लेंगे वो है कि अल्लाह की तरफ से ढील को, मोहलत को अपने लिए खैर समझना। कुरान करीम ने इसको वाज़ तौर पर बयान किया है, आज हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। कुरान करीम की चूँकि एक आयत में तस्करा है कि जिसमें वाज़ तौर पर ढील और मोहलत का तस्करा करके कुरान ने नफ़ी किया कि तुम्हारे लिए खैर नहीं है, एक और आयत में बुख़ल का तस्करा करके बयान किया कि ये तुम समझ रहे हो कि बुख़ल की सूरत में जमे माल तुम्हारे पास होता है, माल अकाउंट में आ जाता है, पैसा तुमसे सादिर नहीं होता, तो जमा हुआ हुआ जो माल नज़र आ रहा है वो खैर नहीं, वह हुआ शर्रुन, वो शर है, वो तुम्हारे लिए बदतरीन एक ज़रा रसां चीज़ है। तो हम इस आयत को पहले मुतालिया करते हैं कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला होता है सूरह आल इमरान 178 में, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो ये गुमान ना करें, क्योंकि काफिर दुनिया की जीनत माल औलाद की कसरत के ऊपर खुश होते थे और इस अपने इतकदात को फिर बरहक समझते हुए उसकी तरफ ये निस्बत देते थे कि इस वजह से चूँकि हम अपने इतकदात में मुहकम हैं इस वजह से हमें ये खैर बरकत अता है। तो कुरान आके इसकी नफ़ी कर रहा है कि ये जो इन्हें ढील और फुर्सत मिली है, ये ढील और फुर्सत इनके लिए खैर नहीं है, शर है। लिहाजा आयत करीमा की तरफ तवज्जो दें कि वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ़र किया वो ये गुमान ना करें, नफ़ी कर रहे कि तुम लोग ये अपना नज़रिया और अकीदा तर करो ये बदगो ये गुमान जो तुम्हारे बातिल गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया। क्या है वो गुमान? अन्नमा नुमली लहुम, कि हमने इनको जो ढील दी है, हमने इनको जो फुर्सत दी है वो क्या है? खैरुन लि अनफुसहिम, ये इनके लिए बहुत बेहतर है, खैर है। इसमें तफजील का सीगा खैर, यानी बहुत बेहतर है ये। इन्नमा नुमली लहुम, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हमारा फ़लसफ़ा क्या है, क्यों हमने इनको ढील दी हुई है, क्यों हमने इन लोगों को मोहलत दी हुई है। तो कुरान अर्ज़ करता है कि ले यज़दादू इस्मा, ताकि इन ये लोग इजाफा इनमें करते रहें, किस में? गुनाह के अतबार से ये बढ़ते चले जाएँ। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, इनके लिए इंतहाई पस्त और एहानत आमेज़ अज़ाब अल्लाह ताला ने करार दिया है। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि फ़लसफ़ा इमला जो कुरान करीम ने ज़िक्र किया है वो ये है कि इनको मोहलत दें, मोहलत दे के ये अपने जहन्नम को और बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको गाफिल करना मकसूद है। अगर इनके ऊपर सख्तियाँ लाएँ तो मुमकिन है कि ये गाफिल ना रह सकें। लिहाजा ज़ीनत दुनिया में खूब अल्लाह ताला इन्हें मुब्तला करता है, इनकी सारी की सारी तवज्जो दुनिया की तरफ लगा देता है, आल औलाद की तरफ लगा देता है इन्हें। और अच्छा भी वो लगता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें घबराहट होती हो, अच्छा भी उन्हें ये लगता है कि शुक्र है फ़लाँ दीनी महफिल से भागे, फ़लाँ दर्स से भागे, फ़लाँ एक कार खैर से भागे जिसमें ज़हमत थी। तो अल्लाह ताला उन्हें अपने से कामिल दूर करता है, लेकिन दूर करने की अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, जिसे कैद से भी अल्लाह ताला ने ताबीर किया है कि खुदावंद मुताल ज़ीनत दुनिया से उनके कुलूब को सख्ती के साथ जज्ब कर देता है, वो ज़ीनत दुनिया में डूब जाते हैं। यानी उन्हें अगर कोई फ़िक्र होती है तो सिर्फ अपने जॉब और माल और पैसा और कारोबार की, या फ़िक्र होती है अपने आल औलाद की, या सैर व तफरी की और महाफिल की, बस इसी से ताल्लुक़ है, खुदा की तरफ दीन की तरफ नहीं आएंगे। लिहाजा ये खुदा की ज़ात का उनके साथ एक कैद है, कि जैसा कि मकर व मकर अल्लाह, मकर भी कह सकते हैं, कैद भी कह सकते हैं, दोनों हम माना लफ्ज़ हैं। हम अभी इन कलिमात की तशरीह इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, लेकिन पहले गुमान को देखें कि कुफ़ार क्या गुमान कर रहे थे। इधर मुमकिन है कि कलमे कुफ़ार एक तबके को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क़ुरान ने जिसको ज़्यादा नुमाया किया है इस आयत करीमा में, वो अमल है। क्योंकि काफिर, हकीकी काफिर तो हमारे सामने एक फ़िकी इस्तिलाह के तौर पर है काफिर, एक कुफ्र की इस्तिलाह अहादीस मुबारका में वारिद हुई है, ये जामे तर है, तफसीली है, उसमें तारिक उस्सलात काफिरों, नमाजी जो तारिक उस्सलात है, नमाज को तर्क करता है, उसे भी काफिर करार दिया गया है। लिहाजा अहादीस में जामे हैं, क्योंकि बाज़ अखलाकी हवाले से हैं और बाज़ ताकीदी अहकाम शरिया के इनवान से भी कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और कुरान करीम की तरफ आएँ तो मुशरिकीन और कुफार, इसको मुनाफिकीन का वो दर्जा जिसमें वो असलन अल्लाह को कबूल ही नहीं करते या शक करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे, इन्हें भी कुफ्र से ताबीर किया गया। लेकिन ये आज के दौर में ज़ाहिर, उस दौर में भी आम लोगों के लिए तो ज़ाहिर नहीं होता था, खुदावंद मुताल ने बयान किया कि माशरे में ये वाला तबका मौजूद है और ये लोग अंदर से शक में हैं, शक के नबूवत रखते हैं, ये कुफ्र काफिर हैं, हम उनसे बर्ताव मुसलमानों वाला कर रहे हैं चूँकि जानते नहीं हैं। लिहाजा भी इस जगह पे उस अमल को देखें कि वो लोग ढील को क्या शुमार करते थे अल्लाह की तरफ से फुर्सत, और ढील को खैर शुमार करते थे। ये मुहिम है, यानी नेमात में घिरा हुआ होना और कोई दुनियावी मुश्किल का ना होना, इसे क्या अपने लिए शुमार करते थे? खैर शुमार करते थे। लेकिन कुरान क्या फरमा रहा है कि नहीं, ये गुमान है इनका कि ये खैर है इनके लिए। यानी दुनिया में किसी का मालो दौलत, तकलीफ़, मुसीबत, दर्द, रंज, गम से आज़ाद रहना उसके लिए कभी भी खैर नहीं है, खैर नहीं है कभी हो सकता। अभी इंशाल्लाह रवायात आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम, चूँकि उन्होंने तफसीली रवायात इस हवाले से बयान की हैं, तो असहाबे आइमा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते थे जब चंद दिन देखते थे कोई गम और दुख और नुकसान नहीं हुआ, और आते थे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि आया हम अजाब का शिकार हैं, फिर इमाम उनसे उनकी हालात ज़िंदगी सुनते और फिर उन्हें जवाब देते थे। यानी ये हमारे लिए एक मेयार है, अगर चंद दिन गुजर जाएँ या एक मुद्दत गुजर जाए مثلا ہفتہ، دو ہفتے، مہینہ یا چار پانچ دن، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی غم نہیں لاحق، کوئی رنج لاحق نہیں ہے، کوئی درد نہیں اٹھے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی اضطراب جنم نہیں لیا، پریشان ہو جانا چاہیے ہمیں؟ یہ خیر نہیں ہے، حالت خیر میں زندگی بسر نہیں کر رہے، کیونکہ سجن المؤمن ہے دنیا. صحیح سند روایت ہے، معتبر احادیث میں سے ہے، الدنیا سجن المؤمن، مومن کو جب یہ قید خانہ نہ لگے آفت میں مبتلا ہے، پھر اپنے ایمان پہ شک کرے وہ. اگر اسے جیل لگتی ہی نہیں ہے، مشکل لگتی ہی نہیں ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا مورد نہیں آتا کہ اس کا سینہ جکڑ جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، غم کا شکار ہو یا کوئی نقصان کی خبر اسے ملے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خطرے میں ہے. بہرحال آیت کو ہم پہلے اس کے تین حصے آپ مد نظر رکھیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے. پہلا ہے کہ گمان، البتہ ادھر گمان کرنے والے طبقے کا ذکر کفر کافرین قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت مخاطب کافرین تھے. ہر آیت میں ایک مرکزی معنی ہوتا ہے، اس کی اس تدبر کا ایک آپ کی خدمت میں طریقہ کار عرض کیا جا رہا ہے، جو قواعد تفسیر سے ہمارے سامنے آتا ہے، کہ ہر آیت کریمہ میں ایک مرکزی معنی ہے. اس مرکزی معنی کو بیان کرنے کے لیے کبھی کسی واقعے کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی مخاطب کا تذکرہ کر کے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی سبب کے تحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں انجام پائے، جسے آپ شان نزول یا سبب نزول کے عنوان سے جانتے ہیں، اس کو مد نظر ہے، اس واقعے کی مناسبت سے ایک حکم صادر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ قصہ اصل میں مد نظر نہیں ہے، وہ جو مخاطب ہے، وہ مخاطب در حقیقت اس جگہ پہ اثر انداز ہوتا ہے، مخاطب بھی. ایسا نہیں ہے کہ قصہ جب ہم کہہ رہے ہیں مد نظر نہیں ہے تو اس میں وہ شخصیات کا تعارف مد نظر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی مرکزی حیثیت اسے حاصل نہیں ہے، مراد یہ ہے. بعض مرکزی حیثیت اس معنی کو حاصل ہے جو ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے، اس میں خداوند متعال اپنی تدبیر جو مومن کے لیے قرار دی ہے، جو ہدایت پہ چلتے ہیں ان کے لیے جو اللہ کی تدبیر ہے وہ آشکار کرنا چاہ رہا ہے. اب انسان اسی میں گم ہو جائے کہ موج کتنی اٹھی تھی، دریائے نیل جو ہے وہ سمندر ہے یا دریا ہے، اور جب درمیان سے راستہ بن گیا تو وہ خشک ہوگا تو اس کی پر چل سکتے ہیں، خشک کیسے ہوا ہوگا، سائنٹیفک طریقے سے اب اس کا جائزہ لینے لگ جائیں. یہ باتیں ہمارے پیش نظر نہیں ہیں، یہ حاشیہ کی باتیں ہیں. اصل اس میں کیا ہے کہ بمبست بند گلی نہیں ہے مومن کے لیے. اس لیے وہ لوگ آ کے جب ٹھہر گئے کہ ایک طرف طوفان کی طرح، کالی گھٹاؤں کی طرح طوفانی لشکر، ایک فرعون کا وسیع عریض لشکر آ رہا ہے، یعنی دو سمندروں کے درمیان پھنس گئے. ایک سمندر لشکر فرعون ہے اور دوسری طرف دریائے نیل بہتا ہوا گہرا پانی ہے، اور اس جگہ پہ یہ بیچارے نہ ساز و سامان رکھتے ہیں، نہ اس سمندر میں سفر کی ان کے پاس فرصت ہے، اور نہ اس سمندر لشکر جو فرعون کا ہے اس سے ٹکرانے کی ان کے پاس قدرت ہے. تو یہاں پہ عام انسان، ظاہری نگاہ رکھنے والا کیا سمجھے گا؟ میں بند گلی میں پھنس گیا ہوں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انا مدرکون، انا لمدرکون یا انا مدرکون، کہ ہم لوگ پھنس گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ اس چیز کو، ان کے اس نظریے کو توڑا، کیونکہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم شاید اب دوبارہ اس جگہ سے زندہ واپس نہیں آ سکتے. لہذا ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان ربی سیہدینی، کلا ان معی ربی سیہدینی. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ سورہ شعراء کی آیات ہیں کہ فلما ترى الجمعان، جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئیں، لشکر، ادھر لشکر موسیٰ، لشکر فرعون، تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ کیونکہ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں ایک یس بہتا پانی کا سمندر اور ایک نیزوں تلواروں سے لیس سمندر فرعونی، تو ہم تو درمیان میں کچلے گئے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم پھنس گئے. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मोमिन के लिए बंद गली नहीं है। कल्ला, इनकार किया इस नज़रिए का, इस तफक्कुर का, और क्या फरमाया कि इन्ना मईया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, सयाहदीनी, वो मुझे हिदायत करेगा। मुलाहिज़ा आपने किया कि अब इस वाक़े के ज़रिए से अल्लाह ताला के पेश नज़र से मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर करना मकसूद नहीं है। ये कवायद तफसीर के नुकात में से एक अहम शय है कि नुकता है कि मरकज़ी एक माना है, और वो मरकज़ी माना क्या है, अल्लाह की मईयत मोमिन के साथ हर मरहले में, इसलिए उसके लिए बम्बस्त और बंद गली वजूद ही नहीं रखती। इसी तरीके से इन आयात में भी, ये जो हम आयत अभी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक मरकज़ी माना है। अब उस जगह पे काफरीन सामने थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास माल दौलत और सरमाया, ज़ाहरी ज़िंदगी की क़ुव्वत, सेहत और सलामती, सेहत भी उनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद उनकी तादाद कसीर और वो जो जाहो जलाल उनका मौजूद था। तो कुरान में तकरार के साथ आता है कि इनकी ये कसरत आपको ताजुब में या मुतासिर ना कर दे। इस माल और इनकी औलाद की कसरत को देख के और माल की जीनत को देख के आपकी निगाहें इनकी तरफ जाज़बियत के साथ ना झुक जाएं। लिहाजा यहाँ पे अब खिताब क्या है, ज़ाहरी तौर पे काफिर को है, काफरीन हैं, लेकिन ये काफरीन के तवस्सुत से एक हिदायत अल्लाह ताला हमें देना चाह रहा है। इंसान की ज़िंदगी में ये गुमान इंसान को आता है कि वो अपनी सेहत, अपनी आल औलाद, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इज़दवाज के बाद औलाद ना हो तो एक दर्द सर है, और अगर इज़दवाज ना हो ये एक और मुश्किल इंसान के लिए खड़ी हो जाती है। अब जिस शख्स के लिए सेहत के साथ इज़दवाज, वसाइल, घर बार और आल औलाद मैसर है, और उसमें उसको वो देखता है कि किसी भी तौर पे कोई परेशानी उसे नहीं आती, कोई दुख नहीं आता, कोई तकलीफ़ नहीं आती, तो यहाँ पे परेशानी उसे होनी चाहिए। इसलिए कुरान करीम इस आयत करीमा में हमें जो मरकज़ी तौर पे हिदायत हमें इस आयत करीमा में दी जा रही है वो यही है कि अन्नमा नुमली लहुम, हमने तुम्हारे लिए जो ढील रखी है, जो फुर्सत दी है, खैरुन ले अनफुसहिम, ये गुमान ना करो तुम्हारे लिए खैर है। हद अकल, हद अकल, ये आजमाइश ज़रूर है इंसान के लिए, सख्त आजमाइश है, फ़ायदा भी उठा सकते हैं, नुकसान भी उठा सकते हैं, और अक्सर लोग गाफिल होते हैं, नुकसान उठा जाते हैं। इन्नमा नुमली लहुम, फिर ख़ुद कुरान करीम अर्ज़ करता है कि हमने ये क्यों अमल अंजाम दिया है, मसा औलाद नहीं छीनी इनसे, सेहत फौरन नहीं छीनी एक गुनाह और गफलत के ऊपर, इनके मालो दौलत नहीं छीने, इन्हें रुस्वा नहीं किया माशरे के अंदर, जबकि ये खा पी तो मालिक कर रहे हैं, लेकिन जब शुक्र की बात आती है तो नमाजों में ढीलापन, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, किताब भी उसकी उठा के नहीं पढ़नी, उसका जिक्र भी नहीं सुनना, उसकी तरह रगबत भी नहीं करनी, तो ये बहुत ही नाशुक्रा इंसान है। जो अल्लाह का नहीं होता ये जहन नशीन कर लें, वो किसी का भी नहीं होता, वो इंतहाई खुद गरज है अंदर, वो फौरन आपसे टूट जाएगा, क्योंकि जो इतने एहसानात के बावजूद उस हस्ती का शुक्र अदा नहीं करता और उस हस्ती की कदर नहीं करता और अकड़ के और गाफिल होकर बैठ जाता है, तो आप भी उसके साथ नेकी करके देख लें, यही सलूक करेगा। लिहाजा यहाँ पे आपने मुलाहिज़ा किया कि मरकज़ी नुक्ता क्या है कि इन्नमा नुमली लहुम, हमने इन्हें जो फुर्सत और ढील दी है, लियज़दादू इस्मा, ताकि इनके गुनाह में इजाफा होता रहे, यज़दादू ये ज़ायद होते रहें, किस एतबार से, इस्म गुनाह के एतबार से ज़ायद होते रहें। यज़दादू में एक हिकमत पाई जाती है, जैसे ये मारूफ कुरान करीम की आयत और दुआ भी है, रब ज़िदनी इल्मा, कि मुझ में इजाफा फरमा, लेकिन किस एतबार से, इल्म के एतबार से। इसी तरह लियज़दादू ईमाना भी आया है, उनमें इजाफा, यानी इजाफा कहाँ पे हो रहा है, ईमान में इजाफा हो रहा है या उनमें, ज़ाहिरी आयत को देखें। मसा कहते हैं रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे बारे इलाहा, मेरे रब, मेरे परवरदिगार, ज़िदनी इल्मा, तो हम तर्जमा क्या करते हैं, मेरे इल्म इज़ा, ये गलत तर्जमा है, ये गलत तर्जमा हमारे यहाँ किया जाता है, क्योंकि इधर ये किया जा रहा है इल्म इज़ाफ़ा, ज़िदनी, زدنی کا کیا ترجمہ ہے؟ زد، ہاں یہ زال سے زدہ اردو والا نہیں، زدنی عربی میں فعل امر ہے، اے اللہ تو زائد کر، نی مجھ میں زائد کر، کس چیز کو؟ علم کو زائد کر، علم میں اضافہ فرما نہیں، زدنی میرے میں مجھے زائد فرما دے، کس اعتبار سے؟ علم کے، کیونکہ علم وجودی چیز ہے، وہ نفس کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی روح اس میں نشو نما پاتی ہے. آپ لقمے کھاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں بارہ الہ یہ جو ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے اس روٹی کے ٹکڑے کو 10 ٹکڑے بنا دے، یا آپ کہیں گے اچھی طرح ہضم کر کے میرے جسم کا حصہ بنا دے. علم بھی اسی طریقے سے ہے کہ علم انسانی نفس کے اندر ہضم ہو کے اس کا حصہ بنتا ہے. لہذا زدنی علم اسی طرح ہے، لیزدادو ایمانا، ایمان ان کے نفس کی نشونما کا باعث بنتا ہے، ان کے نفس کا حصہ بن جاتا ہے. ادھر بھی یہ کیا ہے کہ یزدادو اثما، وہ گناہ، وہ جہنم ان کے وجود کے اندر آباد ہو رہی ہے، وہ اس کے نفس کا حصہ بن رہا ہے. ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے کہ غافل رہیں، اپنی آل اولاد میں مست رہیں، محفلیں اپنی جمائیں اور اپنی مرضی کی تنہائیاں کاٹیں، سوئیں جاگیں پھریں، لیکن کس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب رکھا ہے. اس جگہ پہ ایک دو روایات سے ہم استفادہ کرتے ہیں. امالیہ شیخ مرتضیٰ، یا ہم ڈائریکٹ روایت کی طرف آتے ہیں کہ جس میں استدراج کے معنی کو ذکر کیا گیا ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام اس حوالے سے زیادہ ہیں. ایک روایت میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر کسی قسم کی مصیبت طاری نہیں ہوتی، یعنی یہ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت منقول ہے، جو غرر الحکم میں وہی روایت میں آپ کے سامنے عربی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں. یہ جو نملی لہم ہے کہ اس روایت میں فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ سبحانہ، اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی، یتابع علیک النعم، مسلسل آپ کو نعمتیں دیے جا رہے ہیں، یتابع ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. اس لیے عربی زبان میں خبرنامے کو مسلسل ان کے خبرنامے کو سننے کے لیے کہتے ہیں، کہ آپ ہمارے لیے متابعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مسلسل ہمیں دیکھتے رہیں یا ہماری خبریں سنتے رہیں، یعنی آج کی جدید عربی میں بھی یہ لفظ موجود ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، یتابع علیک النعم، آپ کے اوپر اگر اللہ مسلسل نعمتیں دیے جا رہا ہے، صحت ہے، مال ہے، آل اولاد ہے، پھر کوئی پریشانی گھر میں کسی قسم کی نہیں آتی، جو کھانا چاہتے ہیں آپ کھاتے ہیں، کوئی دل تنگ نہیں ہوتا خرچہ کیسے چلائیں گے، کوئی خبر نقصان کی نہیں سنتے، کوئی آپس میں ناگواریاں پیدا نہیں ہوتی میاں بیوی بچوں وغیرہ میں، کسی چیز سے تھکتا نہیں ہے، یعنی مسلسل نعمتیں آتی ہیں. تو یہاں پہ کیا، پھر آگے فرماتے ہیں نعم مع المعاصی، شرط کیا ہے؟ ساتھ معصیت کار ہو وہ، وَإِلَّا اگر معصیت چھوڑ کے نعمتیں ہوں تب بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، مثلا 3-4 دن صحیح گزریں گے پھر کوئی ایک مسئلہ پیش آئے گا. حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا کہ اگر ٹھوکر لگتی ہے تو وہ بھی شمار کرو نقصان، وہ بھی زد شمار کرو، حتیٰ کہ اتنی مقدار بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رقم گنی تو کم نکلی تو ایک دل دھڑکا، تو پھر دوبارہ رقم گنی تیزی سے تو اب صحیح نکلی. تو یہ جو ہلکے سے ہے یہ بھی شمار اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، کیونکہ روایات ہمارے پاس ہیں 40 دن تک اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل طاری نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہے. تو راوی نے امام سے عرض کی کہ ایسا تو ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے تو ایمان ہمارا نہیں ہوگا. اب یہ معصیت کے بغیر ہے، یہ جو ہم نملی لہم پڑھ رہے ہیں یہ معصیت کے ہمراہ ہے، لیکن یہ آزمائش کے فلسفے سے بات بیان کر رہا ہوں. جو ہم استدراج کی نوعیت پڑھ رہے ہیں وہ تو اس روایت سے ہم نملی لہم کا مطلب سمجھیں گے، لیکن جو میں ابھی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ آزمائش کی دنیا سے ہے، کہ آزمائش میں اللہ نے، کیونکہ یہ دار الازمائش ہے، یعنی سمندر آزمائش میں ایک مچھلی زندگی بسر کر رہی ہے، آپ اپنے آپ کو اس مناسبت سے دیکھ سکتے ہیں. لہذا ہو نہیں سکتا آزمائش سے باہر ہو، نعمت بھی آزمائش اور مصیبت بھی آزمائش ہے. تو امام علیہ السلام نے اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا ایسا نہیں ہوتا تم نے رقم گنی ہو تو کم نکلے، تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ اسی باب سے ہے، اتنی مقدار کی بھی آئے تو ٹھیک ہے، کوئی ٹھوکر لگ گئی، کوئی ہاتھ کٹ گیا، کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی ایسی سوچیں ابھر آئیں کہ دل تنگ ہو کے رہ گیا، صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو خلاصہ کلام یہ آزمائش کے باب سے تھی۔ لیکن یہ جو املا ہے اس کو عذاب استدراج کہا گیا ہے، یہ چونکہ ابھی آیت میں آپ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی تو اس میں اس کا تذکرہ ہے نستدرجہم، تو اسے عذاب استدراج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو امام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، اگر کسی پر مسلسل نعمتیں آتی رہیں لیکن مال معاصی، وہ کیا معصیتوں کو انجام دے رہے ہیں، مثلا گناہ مختلف قسم کے انجام دیتا جا رہا ہے، فہوا استدراج لگ، تو یہ کیا ہے اس کے لیے استدراج ہے، یہ ڈھیل، یہ نعمتوں کا عطا ہونا یہ کیا کہلائے گا، استدراج کہلائے گا۔ یہ آپ نے ایک روایت دیکھی ہمیں، اور پہلے آیات کو دیکھ لیں اور پھر باب الکافی کے باب الاستدراج میں چار احادیث ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کتنی احادیث ہم پڑھ پاتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ آپ نے اس قاعدے کو مد نظر رکھا کہ ہر آیت کریمہ میں ایک یا چند مرکزی معنی ہیں، تدبر کر کے پہلے اس معنی کو لیں، وہ معنی چند ذرائع سے آپ کو بیان کیا جائے گا، ان میں بھی ہدایت ہے، لیکن وہ مرکزی معنی کو لینا لازم ہے ہمارے لیے، وہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے والا ہے، یعنی یہ جس کا اعتقاد ہو کہ اس کے لیے بند گلی نہیں ہے، بڑا راحت اور سکون میں آ جائے گا، جیسے وہ سارے اصحاب موسیٰ پریشان تھے، موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے، اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ تم ڈھیل کو یعنی گناہوں کے ساتھ نعمات کی فراوانی کو قطعاً و قطعاً اپنے لیے خیر نہ سمجھو، خوش قسمتی نہ سمجھو، کہیں گے کہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ جاب بھی بڑی اچھی مل گئی، ماشاءاللہ آل اولاد بھی ہے، لوگ بھی بڑا پسند کرتے ہیں اسے، ظاہری طور پہ رنگ ڈھنگ پرسنالٹی خوبصورتی بھی بڑی دکھائی دیتی ہے، یہ قطعاً اس کے لیے خوب نہیں ہے، یہ خیر نہیں ہے، یہ اس لیے ہے لیزدادو، ان کے نفس میں اضافہ ہو لیکن سیاہکاری کے اعتبار سے، ان کا نفس جہنم بنتا چلا جا رہا ہے، وہ یعنی وہ جو زہر ہے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے وجود کے اندر، اور یہ عذاب مہین ہے۔ اگلی آیات، اب ہم آیات سے پہلے تفسیر کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ طارق میں ارشاد باری تعالی، یعنی یہ سنت الہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی معصیتکاروں کے ساتھ یہ انجام دیتا ہے، اس کو بھی ذہن نشین رکھیں، اطاعت گزاروں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے، معصیتکاروں کے لیے، جو آپ نے ابھی تعریف امام علی علیہ السلام کی زبانی غرر الحکم سے مطالعہ کی، غرر الحکم سے مطالعہ کر کے اب ہم اس جگہ پہ پہنچے، آگے سورہ طارق سے ہم دیکھتے ہیں، آخری آیات ہیں سورہ طارق کی، انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ بھی مکاری چلتے ہیں، وعقید و قیدا، اور میں بھی ان کے ساتھ چال چلوں گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی چال، اسے تدبیر کا نام بھی دے سکتے ہیں، کہ انہم یکیدون کیدا، کہ یہ لوگ مکاری چلتے ہیں، قید کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وعقید و قیدا، ہم محترمانہ اس کا ترجمہ اگر کریں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی تدبیر کرتا ہے، وإلا ظاہری ترجمے کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکر اللہ تعالی ان سے کر رہا ہے، اللہ تعالی ان سے سازش ان کے خلاف قائم کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کے اسماء و صفات ایک طولانی بحث ہے، ذات الہی، پھر صفات الہی، اور صفات الہی کے نتیجے میں اسماء الہی سامنے آتا ہے، یہ ترتیب ذہن نشین رکھیں، اس پہ گفتگو ابھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن ذات، صفات اور پھر اسماء ہیں، اسماء دو طرح کے ہیں، ایک ہیں لفظی اسماء اور ایک ہیں وجودی اسماء، جیسے ہمارا وجود ہے اس کائنات میں، کائنات میں دیگر خلقت موجود ہے، یہ جو وجودی اسماء ہیں یہ وجودی اسماء اہمیت کے حامل ہیں۔ اسماء الہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ توقیفی ہیں، اسماء الہی کیا ہیں، توقیفی، توفیقی نہیں، توقیفی، توقیفی یعنی اللہ کی جانب سے آئیں گے، آپ خود نہیں بنا سکتے۔ اب اللہ کی صفات کی اساس پہ ایک اسم تو بنتا ہی ہے، مثلا اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے تو رحمت کا صفت ہے رحمت، لیکن رحیم اسم ہو جائے گا، اسی طرح اللہ کا معاف کر دینا صفت ہے، لیکن وہ غافر یا غفور ہونا یہ اسم بن جائے گا، اسی طریقے سے قید ہے، लेकिन यहाँ पे ये तवज्जो रख चाहिए, कुरान करीम में जो अल्लाह की औसाफ़ हैं, हर औसाफ़ से हम अल्लाह के असमा को इख्तियार करके उसको पुकार नहीं सकते, तो काइद हम या मक्कार कहने लग जाएं, या माकिर कहने लग जाएं, या ज़ारे खेत खेती बाड़ी करने वाला किसान नहीं नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को कह सकते। तो ये हमारे पास एक बयान आया कि इस जगह पे भी दिक्कत करना ज़रूरी है कि अगरचे ये वह अकीदु कैदा कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, इन लोगों ने अगर चाल चली है, मक्कारी चली है, तो हम भी मक्कारी और चाल चलेंगे इनके साथ, हम भी साजिश करेंगे, लेकिन इसको मुहतरमाना अंदाज में हम क्या कहेंगे, अल्लाह भी तदबीर करेगा। अब अल्लाह की तदबीर देखें, ये मासीतकारों के लिए अल्लाह ताला ने रखी, इसलिए कुर्रे अर्ज़ पे हद अकल गुना हम अंजाम ना दें, कम से कम ये होना चाहिए। ये आगाज़ है सफ़र इंसानियत का, वाजिबात अदा करें और अपने लिए कम से कम क्या रखें कि गुनाह सरज़द ना हो किसी भी सूरत में, क्योंकि गुनाहगारों के लिए खुदा से दूरी है और फिर वो अल्लाह ताला के इस जाल में आ जाता है। क्या कि फिर आयत है फमहिलिल काफिरीन, कि आप काफरीन को मोहलत दे दें, छोड़ दें, ढीला दे दें, अमहिलहुम रुवैदा, हम इनको इसी तरीके से मोहलत देते हैं और फिर एकदम से अल्लाह ताला इन्हें पकड़ेगा। इधर भी आपने देखा उधर नुमलीलाहुम का तस्करा था और इधर क्या है, इमहाल का तस्करा या महिल तमहील का तस्करा है। अमहिलहुम रुवैदा इमहाल, इमहाल और जो इमला है यानी नुमली, ये करीबुल माना लफ्ज़ हैं। एक और आप आयत देखें और इस आयत के ज़िम्न में हमारे पास अहादीसे मुबारक भी ज़्यादा हैं। दो आयात हैं जिसमें इस्तिदराज का हुक्म आया, सूरह आराफ आयत नंबर 182-183 देखें, क्योंकि इंसान गुमान यही करता है कि नेमतें मेरे पास ज़्यादा हैं और गुनाह भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। इधर याद रखें कि इधर गुनाह कबीरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा गुनाह सगीरा भी, क्योंकि उलमा बयान फरमाते हैं कि गुनाह सगीरा अगर तकरार से हो तो वो भी क्या बन जाता है, कबीरा है, इसलिए गुनाह सगीरा तकरार से अंजाम पाए तो वो भी कबीरा बन जाता है। इसलिए इस ज़ाब्ते में जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गुरारुल हिकम में मुतारिफ़ कराया, तस्करा इस चीज़ का नहीं है कि मासी से मुराद गुनाह कबीरा है, बल्कि क्या इमाम ने फरमाया कि अगर तुम देखो अल्लाह सुबहानव तआला ने तुम्हें मुसलसल नेमतें दी हैं और साथ साथ गुनाहगार ज़िंदगी भी तुम्हारी चल रही है, समझ लो अजाब इस्तदराज है, ये सबसे सख्त तरीन अजाब इस्तदराज ही इंसान के लिए करार दिया गया है। एक और आयत आप ये देखें सूरह आराफ की, वल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयात की तकजीब की, हमारी आयात की जिन्होंने तकजीब की, झुटलाया, आयात को झुटलाना यही है, कुरानी नज़रिए और मौक़िफ़ को रद्द कर दिया। कुरान जो नज़रिया आपको दे रहा है, कुरान जो आपको मौक़िफ़ दे रहा है, अगर कोई उसको रद्द कर दे वो क्या कहलाएगा, तकजीब आयात। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से पकड़ेंगे कि उन्हें असलन इल्म ही नहीं इसका हो सकेगा, क्योंकि साजिश में इंसान आस्ता आस्ता, जैसे परिंदों के लिए आपने अनदेखा जाल बिछाया हुआ है, परिंदा दाने ज़ाहरी तौर पे खा रहा है लेकिन खाते खाते अपने मौत के मुंह में जा रहा है, तो ये इसी को कहते हैं अजाब इस्तदराज। फिर आगे अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है वह उमली लहुम, मैं इन लोगों को ढील दूंगा, इन कैदी मतीन, और मेरे जो कैद है, मेरी जो मक्कारी या मेरी जो तदबीर है वो बहुत मोहकम है, बहुत कवी है, मतीन है वो। अगली आयत देखें कुरान करीम की सूरह कलम आयत नंबर 44 और 45 में, फ़ज़रनी, मेरे लिए इसे आप छोड़ दें। अल्लाह ताला ने जिससे सख्त तरीन इंतकाम लेना है, वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं खुद इससे निपटूंगा। जैसे होता है ना कि बास के लिए आपने मसलन बास दीगर अफराद रखे हैं, लेकिन बास कहते हैं कि नहीं मैं खुद इससे निपटूंगा, तो ये सख्त तरीन अल्लाह ताला का अजाब या एक कह लें कि दहशत उसके कल्ब के ऊपर कायम करना है। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे, तंग करते थे, उनमें से बाज़ अफराद हैं जिनकी को कुरान करीम ने कहा कि इसको मेरे पे छोड़ दें, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में आते थे वो ताने थे, कभी उन्हें साहिर कहा जादूगर, कभी कहा कि सीख सिखा के दूसरों से आ गया नाउज़ुबिल्लाह, कभी कहा शायर है, कभी कहा मजनून है नाऊज़ु बिल्लाह, और बहुत संगीन है ये, बहुत संगीन। आप अपने घर में भी ये किसी से ये वाले ताने नहीं सुन सकते। और अगर कोई ऐसी हस्ती हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मंजलत के ऊपर जो फ़ाइज़ हैं, मकाम नबूवत और रिसालत, उसके लिए ये कलिमात बोले जाएँ तो किस कदर संगीन होंगे। तो फ़ज़र नहीं, अल्लाह ने फरमाया इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। वमई युकद्दिबु बिहाज़ल हदीस, और वो शख्स के जो इस बात को तकजीब करता है, मतलब कुरान करीम या कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करता है, सन्नस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यालमून, फ़ौरन उनके ऊपर अल्लाह अजाब नहीं बरसाता। सबसे सख्त तरीन नौ अजाब की अजाब इस्तदराज है। अजाब इस्तदराज अल्लाह ताला उनकी यानी उस तरह से पकड़ेगा, उन्हें पता ही नहीं लगेगा, और आस्ता आस्ता वो पूरे जाल में, आग में, दोजख में, जहन्नम को आबाद कर चुके होंगे। फिर फरमाता है, वह उमली लहोम, मैं इन्हें ढील देता हूँ, इन नकैदी मतीन, मेरी तदबीर इंतहाई मुहकम है। इस आयत में भी आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरीके से अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने इस तदबीर को, इस सुन्नत को ज़िक्र किया है। कुरान की एक और आयत आपकी खिदमत में पढ़ी जाती है ताकि हम इसकी फिर अहादीस से एक तफसीर को मुलाहिज़ा कर सकें। सूरह रात आयत नंबर 32, आप देख रहे हैं कि इस आयत को भी गुमान इंसान क्या करता है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है और बड़ी नेमतें, सेहत भी नहीं उसकी जा रही, माल भी नहीं जा रहा, नुकसान भी नहीं जा हो रहा, वो समझता है मेरी कोई लक जाग गई है, किस्मत जाग गई है, खैर में हूँ। जबकि अल्लाह ताला तारुफ करा रहा है, ये मत गुमान करो, तुमसे बदतरीन अजाब में कोई भी नहीं हो रहा, सबसे बदतरीन अजाब में तुम जा रहे हो। लिहाजा इस आयत को भी देखें कि सूरह रात की, वलकद उस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका, आपसे पहले भी जो रसूल गुजरे उनका मजाक उड़ाया गया है। ये तवक्को ना रखें कि हम जितने बाकमाल हो जाएंगे उतना माशरा सुनने लग जाएगा। जितने बाकमाल होंगे, मरहला नबूवत के ऊपर जो हस्ती पहुंच जाए, रिसालत में जो हस्ती पहुंच जाए, जो हर नज़रिए इल्म के मुताबिक अमल करने वाली ज़ात हो, और अमल भी खालिस अल्लाह के लिए और खलूस से अमल अंजाम दे रहा है, दूसरों के साथ बदी नहीं चाहता, अगर वो हक बात बयान करे तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, गालियां उसे पड़ेंगी, तोहीन उसकी होगी, अपनों से मुखालिफ उसके अंदर हो जाएंगे, या जौजा है, या ख़ानदान का फ़र्द है, या करीबी दोस्त है। ये कैसे तसव्वुर हो सकता है कि ये एक गैर मासूम आलिम, चाहे जितने भी मकामे इरफान और तकवा की मंजिल पे पहुंचा हो, वो अगर हिदायत की वही बात करे तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए। लिहाजा जिसका मजाक नहीं उड़ाया जाता उसके ऊपर शक करना चाहिए, जिसके सुनने वाले हज़ारों हों उस पर शक होना चाहिए, जिसके ऊपर सारे के सारे लोग वलवले हिजान और इंतहाई जोश और जज्बे के साथ उभर आए उस पर शक होना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, पहली फुर्सत में उसे ये सब चीज़ें मैसर आ गई। कोई तो तन्हाई ये काटता, कोई तो मशक्क़त ये काटता, कोई तो इसने गाली सुनी होती, कहीं तो इसका मजाक उड़ाया होता, कहीं तो इसने अपने वजूद के अंदर सब्र के मराहिल तय किए होते लोगों के रवैयों की वजह से। लिहाजा आपने इस जगह पे देखा, वलक़दस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका, आपसे पहले जितने रसूल गुजरे हैं उन सब का क्या किया गया, इस्तेहज़ा मजाक उड़ाया गया। फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया हमने उनको क्या किया, ढील दे दी। आप देख रहे हैं ढील किसके लिए, मासीयतकार, यानी वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का ज़ाबिता, सबसे बेहतरीन ज़ाबिता है, जामे ज़ाबिता है। और इन आयात में भी देख रहे हैं कि बार बार काफिर है या मुकज़्ज़िब आयात है, जो तकज़ीब आयात इलाही की करने वाला है। फ़अमलैतु लिल्लज़ीन कफ़रू फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ काना इक़ाब, फिर हमने पकड़ लिया तो अब ज़रा बताओ कैसा था हमारा अज़ाब, यानी मज़ा आया तुम्हें, अगर हम बलागी एक अंदाज में उससे पूछें कि कैसा तुम्हें इस मार का मज़ा आया, तो ये है खुदावंद मुताल का अजाब इस्तदराज। इसी तरीके से कुरान करीम की हम एक और आयत को मुतालिया करते हैं, अलबत्ता उसमें इख्तलाफ है कि वहाँ पे इमला से क्या मुराद है। रवायत करीमा में ज़िक्र शैतान के लिए किया गया, क्योंकि पूरे कुरान करीम में ढील देने की नस्बत अल्लाह की तरफ है, गैर अल्लाह की तरफ उसकी नस्बत नहीं है। अल्लाह ये फुर्सत देता है, लेकिन अल्लाह की ये फुर्सत देना शदीद अल्लाह की दुश्मनी की बुनियाद पर है, शदीद दुश्मनी, इसलिए ये जो अल्लाह ने जिससे शदीद दुश्मनी करनी है अल्लाह की तदबीर किया है, उसे ज़िंदगी में एक मोहलत देता है, आल औलाद, कुव्वत, माल, दौलत, खूबसूरती, जीनत वो खूब अल्लाह ताला दे देगा, ताकि एक ज़र्रा भी वो नेकी की तरफ ना आए। जैसे कि भी आप इसराइल को देख रहे हैं, इसराइल एक शैतानी मरकज़ है, और उसके ये जो हम मुख्तलिफ मनाजिर देखते हैं कि कुव्वत है या एक अस्करी ताकत पैदा कर चुका है या जीनत दुनिया हासिल किए हुए, बिलाशक शक्ल शुबह यह ढील है। तारीख़ में हज़ारों ऐसी कौमें गई हैं कि जिन्होंने तोलानी तौर पर एक मुद्दत इस ज़मीन के ऊपर अपनी शान शौकत के साथ गुजारी, लेकिन इस तो नाबूद हो गई। इसलिए ये इसको इमला से ताबीर करें, ढील से ताबीर करें, यह अल्लाह ताला की तदबीर है। आयत जिस में के बारे में, क्योंकि रवायत वहाँ पर बयान करती है कि इधर अमला लहुम से मुराद ढील है, जबकि बाज़ उलमा ने तहकीक करते हुए एक और माना किया। अलबत्ता मैं आयत पहले आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ, चूँकि आयत हमारे लिए अहमियत की हामिल है। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला होता है, इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारहिम, वो लोग जो पीठ फेर के भाग गए हैं, मुंह मोड़ लिए हैं। राह हक में ये मंजर बहुत मिलते हैं, अगर किसी ने राह हक को आबाद करना है, राह बातिल पे हजूम दर हजूम है, राह हक पर तन्हाई के बहुत तोलानी इंसान को अय्याम काटने पड़ते हैं, तो लोग पीठ फेर के भाग जाते हैं, यानी आते ही नहीं हैं। आज के दौर में कह रहे हैं वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि हर दौर की अपनी अलामत हैं। उस दौर में पीठ फेर के भाग जाने से मुराद है पुश्त करता है फिर मुड़ के देखता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि वो असल में आपसे रबता ही नहीं रखता। इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारहिम, जो पीठ फेर के मुँह रुख फेर के चले जाते हैं, मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, बाद इसके कि उनके लिए हिदायत आश्कार हो गई, अश्शैतान सव्वल लहुम, शैतान है जो तस्वील आमाल करके पेश करता है, यानी इंतहाई मुज़य्यन और ख़ूबसूरत करके अमल को पेश कर दिया, ख़ूबसूरत करके अमल को पेश किया। ये शैतान का हम तस्करा इस बाब में तोलानी तौर पे पढ़ चुके हैं कि शैतान कैसे आमाल को मुज़य्यन करता है। एक आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ भी कर देते हैं, लेकिन इस जगह पे आयत में देखें, वो लोग जो मुंह फेर के चले गए, यानी राह हक में आपके हमराही नहीं बनते, शैतान ने उनके दिल अगवा किए हैं। वो जो भी हो जाए, अगर हम राह हक से हट जाते हैं, शैतान ने हमें अगवा कर लिया। अलबत्ता ये शर्त है, एक हिदायत आश्कार हो गई हो, अगर किसी के लिए हिदायत आश्कार नहीं है मुस्तस्ना है। अगर हिदायत आश्कार है, परख चुका है वो इस राह को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व राह इमामत को परख चुका है, इस राह पे चलने वालों से आशना हो चुका है, अब रुख फेर के चला जा रहा है, तो ये शख्स अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएगा, अजाब का शिकार हो सकता है। लिहाजा यहाँ पे कुरान की आयत क्या कह रही है कि वो लोग जो मुँह फेर के चले जाते हैं हिदायत के आशकार हो जाने के बाद। हिदायत भी यहाँ पर एक मतलब ज़मनी तौर पर अर्ज़ किया जाए कि हिदायत एक तशकीकी चीज़ है। तशकीकी चीज़ होती है कि जो तफावुत के साथ आश्कार हो, जैसे आप कहते हैं लाइट, नूर। अब नूर एक हकीकत है, लाइट जो है रोशनी एक हकीकत है, लेकिन उसमें शिद्दत और ज़ाफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता। जिसमें शिद्दत और ज़ाफ़ के मरातब बन जाएं और हकीकत दरमियान में मौजूद रहे, एक ही हकीकत रहे, और क्या हो अम्र उसमें कि मरातब उसके अलबत्ता बनते हैं, इसे कहते हैं तशकीकी अम्र। तशकीक शक से है ना, शक होता है ना, उसके मरातब हैं, इधर कुव्वत है इधर ज़ाफ़ है, तो तशकीक से यहाँ पर मुराद है कि मरातब के एतबार से एक हकीकत का होना। हिदायत भी इसी तरीके से है, इब्तदाई हिदायत, मुतवस्सित हिदायत, आला किस्म की हिदायत, मुत्तकीन के लिए हिदायत, आरफीन के लिए, मुकर्रबीन के लिए, हिदायत ही है लेकिन उसके मरातब जुदा हैं। सीढ़ी की मानिंद है, इंसान सीढ़ी की मानिंद हिदायत के राहों पे चलता है। मसलन कुरान पहले मरहले में, पहली सीढ़ी में सब लोगों के लिए हिदायत हुदल्लिन्नास है, लेकिन फिर जो सीढ़ी मुत्तकीन है, मुत्तकीन की सीढ़ी पे अलग नौयत की हिदायत है। इत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, तक्वा की मर्तबे पे अलग तालीम और अलग हिदायत है। लिहाजा हिदायत इस तरीके से है, सबके पास यकसा मर्तबा हिदायत मौजूद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व
پائمہ اتھار و انبیاء علیہ السلام جس مرتبہ ہدایت پر تھے، غیر معصوم اس مرتبہ ہدایت پر فائز نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ ہم ہر روز سورہ فاتحہ نمازوں میں تکرار کے ساتھ جہاں پڑھتے ہیں اس کے کسی حد تک معنی سمجھتے ہوں، لیکن جو بزرگ علماء جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سمجھے، ہم ممکن ہے اس ہدایت سے آشنا اور واقف نہ ہوں. ہدایت اس طور پہ کیا ہو جاتی ہے؟ تشکیکی ایک امر ہے. تو یہاں پہ ہے کہ ہدایت آشکار ہو جائے اور پھر منہ پھیر کے چلا جائے تو قرآن حقیقت بتا رہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم بھی تعجب کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. تو قرآن بیان کر رہا ہے یہ حقائق کہ الشیطان سول لہم، شیطان نے تصویل کر دیا، تصویل یعنی انتہائی مزین اس کے سامنے دوسرے جہان کر کے دے دیا ہے. خوبصورت ایک عمل کو، البتہ جو حقیقت نہیں رکھتا اس کا اضافہ کریں، جو چیز حقیقت نہیں رکھتی اس کو حقیقت بنا کے انتہائی پھر خوبصورت اور مزین کرتا ہے، ایسا کہ انسان اندر سے کھنچتا چلا جاتا ہے اس کی طرف، اسے کہتے ہیں تصویل. شیطان بس یہی کر سکتا ہے، وہ انسان کو ڈھیل نہیں دے سکتا، وہ انسان کو فرصت نہیں دے سکتا، وہ القاء کر سکتا ہے، وہ وجود میں انسان کے ڈال سکتا ہے. لہذا اس کے اوپر ایک آیت انشاءاللہ کافی ہوگی اور ہم اس کو پڑھ لیں. قرآن کریم نے کیونکہ ذکر بھی اس کا کیا ہے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 64 نمبر آیت ہے. اس آیت سے پہلے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے انکار کیا، اور شیطان نے تکبر کیا کہ اسے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنایا. آپ جانتے ہیں کہ نور اور نار دونوں کے حروف اصلی تقریباً ایک ہی ہیں، تو وہ نور آدم پہ نگاہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے اسے اپنے نار شیطان کے اوپر، اپنی نار خلقت کے اوپر اس کی توجہ تھی، لیکن اصل خلقت آدم نور سے ہے اس پر نہیں توجہ تھی. تو پھر اس کے بعد اس نے مہلت مانگی اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو اللہ تعالی نے اس کو مہلت دے دی، تو اس نے کہا کہ میں تو تیری اس کی آدم کی ذریت کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، ہاں بعض میری پہنچ سے ہی باہر ہیں، بعض ہیں قلیل، لیکن ان کا میں جسے کہتے ہیں گلا گھونٹ کے رکھوں گا، یہ جیسے تیسے بھی ہو انہیں شرق غرب آمنے سامنے ہر جگہ سے انہیں گھیروں گا میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب، جا تو نے جو کرنا کر، فمن تبعك منهم، ان میں سے جو تیری اتباع کریں گے، فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، انہیں وافر جہنم ملے گی، خوب انہیں جزائے جہنم دی جائے گی. واستفزز، اب اللہ تعالیٰ اس کو خطاب شیطان کو کر رہا ہے اور ہمیں تعارف کرا رہا ہے شیطان کیا کیا کرے گا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اپنی آوازوں سے، اپنی آواز سے تو ان جتنی استطاعت رکھتا ہے ان میں سے گھیر کے لے کے آپ نے، یعنی وہ آوازیں نکالتا ہے اور ان آوازوں سے قلوب کو اپنے پاس کھینچ کے لے آتا ہے بنی آدم کے. اب وہ آوازیں گانا بھی ہو سکتی ہیں، وہ آوازیں وسوسے، وہ آوازیں غیبت تہمت، آوازیں ہیں شیطان کی. بعض اوقات آس پاس کچھ نہیں ہے، اندر آوازیں ایجاد ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کے باطن تک اس کی رسائی ہے. قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، شیاطین تمہیں دیکھ رہے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے. وہ مزاج شناس بھی ہیں کہ یہ اس کا ضعیف پہلو کیا ہے، اس نے بڑا مطالعہ ہر انسان کا کیا ہوا ہے، اس لیے اسے پتا یہ ضعیف پہلو وہ اسی پہلو سے آئے گا، یاد رکھیں. مثلا ایک بندہ اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، نماز کے باب سے نہیں آئے گا، پتہ یہ نامحرم پہ نگاہ نہیں اسے کنٹرول ہوتی، اسی باب سے آئے گا، اس لیے وہ ضعیف جگہوں سے آتا ہے اور پھر آوازوں سے سب سے پہلے گھیرتا ہے. پھر کیا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے گھوڑوں اور اپنے چیلوں کے ذریعے سے یہ انہیں گھیر کے لے کے آئے گا، یعنی ان کو جاذب صورت دکھا کے انہیں پکڑ کے لے کے آتا ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے شیطان، وہ شریک ہے. بسم اللہ کے بغیر جیسے کھانا کھایا جائے وہ بھی کھا رہا ہے، آپ بھی کھا رہے ہیں، اسی لیے اعوذ باللہ پڑھے بغیر زوجہ سے مقاربت کی جائے تو آپ بھی، روایات میں وارد ہوا ہے کہ دخول کر رہے ہیں اور وہ بھی دخول ساتھ کر رہے ہیں، یعنی اکیلے نہ سمجھیں کہ ایک لذت حاصل کر رہے ہیں، شیطان شریک ہے اس میں، یہ روایات کے الفاظ ہیں. وہ جو نطفہ قرار پا رہا ہے تو اس میں اس کا بھی حصہ آ گیا، اس لیے اعوذ باللہ پڑھ کے زوجہ سے مقاربت کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے دیگر امور ہیں، इंसान समझता है कि अब ये छोटा बच्चा तो मासूम लगता है क्योंकि गुनाह ही नहीं सादिर हुआ हुआ, अब चूंकि उसका नुतफा भी साथ शामिल है तो शर भी उतना ही उसके अंदर उभरता है। ये सारी नसीहतें कर कर के, दम तावीज़ पढ़ पढ़ के, कुरान हिफ्ज़ करा करा के, फिर भी देखता है कि ये फासिद ही निकला है, तो उसके फसाद में इसकी गफलत भी शामिल है। अगरचे उसमें उनसर उसका अपना है, इख्तियार के साथ बालिग इंसान जब अमल अंजाम देता है उसका जुर्म उसके सर पर है, लेकिन इस शख्स की भी गफलत शामिल है जिसने शैतान को शरीक अपने माल और औलाद में कर लिया। इसी तरह अमवाल हैं, अमवाल लेके आते हैं हराम, उसमें दाखिल है, शरीक है उसमें वो, वाइद हम और इन्हें दिलासे देता है, उम्मीदें दिलाता है, वाइद हम यानी झूठी उम्मीदें, वमा यादहम शैतान इल्ला गुरूरा, शैतान जितनी भी उम्मीदें दिलाता है एक भी हकीकत नहीं रखती, तुम ये कर लो फलां हो जाएगा, ये कारोबार करो वो कारोबार करो, 10 मिसालें उन लोगों की लेके आते हैं जो उस कारोबार से कामयाब हुए हैं, और वो जो 100 नाकाम हुए हैं उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, ये शैतान है कि जो उस तरफ तवज्जो नहीं आपकी जाने दे रहा। इसी तरह कई अफराद हैं जिन्होंने दीनी काम शुरू किया, सिफर से शुरू किया, एक मकाम पर पहुँचे और वहाँ से गिरने वाले अफराद बड़ी तादाद में, कामयाब होने वाले अफराद भी हैं, शैतान उनको इबरत का नमूना बना के पेश नहीं सामने होने देता, वो कहता नहीं नहीं मैं तो इमाम खुमैनी ही निकलूँगा, मैं तो शहीद हुसैन ही निकलूँगा, लेकिन दूसरी तरफ भी मंजर है, वो भी तो निकल सकता है, वो तो शैतान है कि जो उम्मीदें दिलाता है ये कर लो वो हो जाएगा फ़लाँ हो जाएगा। ये है कि आपने इस आयत में मुलाहजा किया कि सव्वल लहुम, यह है तस्वील आमाल, तस्वील का कलिमा याद रखें, जो गैर हकीकी उमूर हैं उन्हें जीनत बख्श बना के पेश कर देते हैं, मसलन औलाद ने इस दुनिया से कभी नहीं जाना, सेहत ने आपके हाथ से नहीं जाना, ये घर बार आपसे नहीं छीनना, आपकी तनख्वाह, आपकी जॉब, आपके पैसे हमेशा ही आते रहेंगे, वालदैन इसी तरह मेहरबान रहेंगे, ये तस्वील आमाल है, हकीकत इसके बरक्स है। अच्छा, हमारा आगे का कलिमा अहमियत का हामिल है और वह है कि वह अमला लहुम, और वो उनके लिए ढील देता है। अब इधर दो माना हो सकते हैं, अगर ढील का माना रखेंगे तो शैतान की तरफ नस्बत नहीं होगी और तर्जमा ये बनेगा कि शैतान इनको जीनत बख्श अमाल के ज़रिए से फिसलाता है और अल्लाह ताला फिर ढील देता है। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक रवायत में जनाब कुमैल रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने वसीयत की, उस वसीयत में इमाम ने यही माना लिया जो अभी अर्ज़ की है, अगर आप ढील का लेते हैं। लेकिन साहिब तहकीक ने इस जगह पे इस कलमे को इस लफ्ज़ से नहीं लिया, लिहाजा वो कहते हैं कि यहाँ पे इमलाल से है, यानी उसे फिर रंज और गम में शैतान मुब्तला करता है, क्योंकि जीनत बख्श अमाल की अंजाम दही पे जब अगवा कल्ब हो जाता है और वो गुनाह कर बैठता है तो अब जिसको छोटा दिखाया था इतना बड़ा करके दिखाता है कि तेरी तौबा कबूल ही नहीं होने वाली, अल्लाह की रहमत नऊज़ु बिल्लाह छोटी और तेरा जुर्म जो है वो बड़ा है। तो वो साहिब तहकीक कायल हैं कि इस ये कलिमा इमलाल से मुश्ताक है। बहरहाल हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वाली रवायत को तरजीह देते हुए अगर वो मतलब लें, क्योंकि दोनों मतलब साजगार हैं, टकराव नहीं रखते, तो रवायत के कलिमात आप मुलाहजा करें, दिलचस्प ये कलिमात हैं कि बशारतुल मुस्तफ़ा लशीअतिल मुर्तज़ा, किताब है तबरीए आमली रहमतुल्लाह अलैह की, कदीमी हमारे उलमा में शुमार होते हैं और मोतबर कुतुब में से है कि जिसमें बायरा अलैहिस्सलाम की इमामत पे उन्होंने अहादीस को जमा किया, बशारतुल मुस्तफ़ा यानी आइमा अथार अलैहिस्सलाम की विलायत और इमामत का बयान, लेकिन किसके लिए, लशीअतिल मुर्तज़ा, शिया मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के लिए, खूबसूरत नाम है। उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम जनाब कुमैल को एक तोलानी वसीयत जिक्र करते, बहुत खूबसूरत ये वसीयत है। आज 2024 गुजर रहा है और इस वसीयत पूरी वसीयत को शायद पढ़ने का वक्त एक तालिबे इल्म के पास भी ना हो, हालत ये पहुंच गई है, और जनाब कुमैल तन्हाइयों में इमाम अली अलैहिस्सलाम ये बातें किया करते थे। मसलन एक कभी आप लोग फ़र्ज करें, हम एक तसव्वुर में जाएं, हम हों और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हों तो क्या हम उनके लिए अंजाम देंगे? बाज़ ने तो कहा कसीदे पढ़ेंगे, आवाज़ें अक्सर की इतनी अच्छी हैं ही नहीं, वो कसीदा भी क्या पढ़ेंगे, तो वो वक्त गुजारें तो क्या करेगा वो, फिर इमाम उससे बातें करना चाहें तो कौन सी बातें करेंगे, आया वो सुनने का मुतहम्मिल है, उसे अच्छी लगेंगी वो बातें, दिलचस्प लगेंगी, ज़ौक और शौक से बैठा रहेगा? अगर बहुत अमीक अंदाज में मुहासबा करें तो कह सकते हैं कि ज़्यादातर अफराद ऐसे ही हैं कि वो इमाम की बातों से बोर हो जाएंगे, सुनना ही नहीं चाहते वो बातें, जो इमाम करना चाहते हैं वो सुनना ही नहीं चाहते। नहजुल बलागा इमाम अली अलैहिस्सलाम की बातें हैं, वो आज भी उनके हरम में नहीं गूंज रही। अभी तो सूरत हाल यह है कि बातें दूसरों की गूंज रही हैं, अतराफ़ में भी नहजुल बलागा के कलाम आपको कलील नज़र आते हैं, क्योंकि जो इमाम हम अपने इमाम को सुनाना चाहते हैं, उस दौर में भी इमाम का गम यही था कि मेरी तुम नहीं सुनते, अपनी तो सुनाते रहते हो हर टाइम, तो मेरी क्यों नहीं सुनते। यहाँ पे भी आप देखें, इमाम की अगर हम सुने तो इमाम कुमैल को क्या कह रहे हैं, या कुमैल इहफ़ज़ क़ौल अल्लाह अज़्ज़ा वजल, याद करो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये फरमान। आप भी हिफ्ज़ करें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे कुमैल को ये कहा कि सव्वला लहुम व अमला लहुम, शैतान उनके लिए अमाल को पुरजीनत करता है और फिर अमला लहुम, तो यहाँ पे अमला लहुम के ये दो माने हो सकते हैं, अल्लाह ढील देता है। तो यहाँ पे फरमाए मामने वाल मुसव्विलु शैतान, वो जो अमाल को खूबसूरत और जीनत बख्श बना के पेश करता है वो कौन है, शैतान। वाल मुमली अल्लाह ताला, लेकिन जो ढील दे रहा है वो कौन है, अल्लाह ताला। चूंकि पूरे कुरान में ढील की निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ। और ढील का मतलब भी आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के फरमान से ही पढ़ चुके हैं कि उससे क्या मुराद है, कि अगर किसी शख्स को नेमतें दर नेमतें मिलती रहें और गुनाह भी वो करता रहे और कोई नेमत उससे ना छिने, तो ये शख्स आज़ाब में है। लिहाजा आगे फिर फरमाते हैं कि या कुमैल उज़्कुर क़ौल अल्लाह ताला ले इब्लीस लानतुल्लाह, इब्लीस लानतुल्लाह अलैह, उससे जो अल्लाह ताला ने फरमाया था उस कौल को ए कुमैल याद करो। और वो यही आयत है जो अभी मैंने आपकी खिदमत में पढ़ दी, वो अजलब अलैहिम बिखैली का व रजली का, कि तुम अपने इन घोड़ों और पैरों से जो पैरोकार हैं तुम्हारे इनसे घेर के इन्हें लेके आओ। व शारिक हम फिल अमवाल वल औलाद, ए शैतान तो इनके माल और औलाद में शरीक करार पा। वाइदहुम, और शैतान इन्हें दिलासे देता है तो अल्लाह ताला फरमाया जाओ इन्हें दिलासे दो। वमा याइदहुम शैतान इल्ला गुरूरा, शैतान जो कुछ भी हमें अंदर पैदा करता है वो सारा गुरूर है, यानी फरेब है। फिर इमाम फरमाते हैं या कुमैल इन्ना इब्लीस ला याइदु अन नफ्सिही व इन्नमा याइदु अन रब्बिही, वो अपने रब के बारे में दिलासे उन्हें दिलाता है। लियहमलहुम अला मासियतिही, अपने नफ्स के बारे में नहीं, सारे के सारे उसे फरेब अल्लाह की जानिब से दे रहा होता है, अपनी जानिब से नहीं। बालफाज दीगर, अगर शैतान तौहीद का दर्स दे तो वो तौहीद भी गैर कबूल है। नबूवत और इमामत की तरफ लेके आए, वो नबूवत और इमामत भी कबूल नहीं है। ये ज़हन नशीन कर लें, अगर नबी खुदा अल्लाह का हकीकी वली तौहीद नबूवत इमामत क़यामत खैर का बयान कर रहे तब वो खैर है। इसलिए नहजुल बलागा में फरमान है कि अगर तुम अपने नफ्स के रुझान पे भी कोई कार्य खैर अंजाम देते हो उससे भी तुम माने हो जाओ, अपने नफ्स की रुझान और असास के ऊपर कार्य खैर अंजाम ना दो, बल्कि चूंकि हुक्म अल्लाह ने दिया है, उसके रसूल और इमाम मासूम ने हुक्म दिया है, इस वजह से उस कार्य खैर की तरफ आओ। क्योंकि एक चार काम नफ्स अच्छे करा के बुरे के ऊपर भी लगा देगा और हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये बुराई है, वो तो काम ही इसी तरह से करता है। लिहाजा यहाँ पे भी ये बयान फरमाया कि लियहमलहुम अला मासियतिन, ताकि मासियत के ऊपर उभारे। शैतान अगर इबादतें करता भी हमें दिखाई दे तब भी उसे बचना चाहिए, क्योंकि ये इबादतें धोखे में मुब्तला करने के लिए। फयुवर्रितहुम बिन्नियम, तो अल्लाह ताला उनको खूब नेमतों में वर्ता हैरत, जिसे कहते हैं ना हैरत में पूरा डूबा हुआ है, तो नेमतों में अल्लाह उसे डुबो देता है हर तरह और हर तरफ से नेमत ही नेमत। इंदल मासी, ये शर्त ज़रूरी है, मासियत के हमरा नेमत ही नेमत है, ये क्या कहलाएंगे, ये अजाब इस्तिदराज है। ये हमारे पास आयात का एक तारुफ था। इसमें हम अहादीस की तरफ अब आते हैं ताकि हम इस मतलब को समझ सकें। कुछ अहादीस आज के दिन और बाकी इंशाल्लाह अगले दर्स में कलील पढ़ के अहादीस हम अगले गुमान की तरफ वारिद हो जाएंगी, क्योंकि इस गुमान को आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी शिद्दत से बयान किया और अस्हाब आइमा अलैहिस्सलाम के आते थे, चार पाँच दिन अगर ना कोई मुसीबत आती तो वो अंदर से घबरा जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ अहादीस कसीर तादाद में आई हुई हैं कि अगर 40 दिन तक यानी तमाम अहादीस को मिलाएं तो ये रवायत हमारे लिए मोतबर रवायत हर सूरत में बन जाती है, 40 दिन तक किसी मोमिन के ऊपर मुसीबत ना आए तो वह अपने मोमिन होने में शक करें। हत्ता कि एक वाक़या हमारी कुतुब में वारिद हुआ है, मोतबर कुतुब में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की दावत पर उसके घर तशरीफ़ ले गए। घर दाखिल हुए तो दीवार के ऊपर मुर्गी बैठी थी, उधर ही अंडा दिया, अंडा ज़मीन पर गिरा, टूटा नहीं। तो ताज्जुब किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम तो शायद उसे पीर मान लें जिसके घर में ऐसा हो, कहेंगे यार क्या ही इसकी बात है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब किया, तो उस शख्स ने कहा यार रसूलुल्लाह मेरे घर में तो हमेशा ऐसा ही होता है, कोई नुकसान ही नहीं देखने को मिलता। तो रसूलुल्लाह ने जहाँ अभी दाखिल हुए थे या चंद कदम ही चले थे, पैर रखा था, उधर से वापस मुड़ गए कि ये शख्स मोमिन नहीं है, उसके घर नहीं दावत पर आए। हमने तो खुशहाली को ईमान की अलामत समझा है, और ये समझा हुआ है कि मुसीबतें आएँ तो इसे दर्द ही ना हो, ये कोई वलीउल्लाह है। ये टीवी में ही वो जो जोगा बन के बैठे होते हैं, बर्फ़बारी हो रही है और वो गुमसुम बैठा हुआ है, ये वही बन सकता है। अंबिया इस तरह नहीं थे, अंबिया गर्मी में गर्मी लगती थी, सर्दियों में सर्दी लगती थी, भूख के टाइम भूख लगती थी, अगर बेहोश एक मकदार में हो जाते हैं वो भी बेहोश हो जाते थे। इसलिए तो उन्होंने कहा कि बशर मिसलुना, आप तो हमारी तरह बशर है, तो इनकार नहीं किया कि हाँ जिस्मानी पहलू के अतबार से देखो तो तुम्हें मुशाबहत नज़र आएगी, लेकिन बातनी अतबार से देखो तो असलन कोई मुकायसा ही नहीं किया जा सकता। अर्श और फर्श में जितना फ़र्क है, शर्क और गर्ब में जितना फ़र्क है, असलन कोई मुकायसा ही नहीं किया जा सकता। इस कदर बुलंद एक वो नफ्स है जो इस कदर बुलंदी पर है और क़ुर्ब इलाही के इतने करीब है कि वही नाजिल होती है, और एक वो है कि जिसने शैतान ने अपना पैरों जिसे बनाया हुआ है, ऐसी है ज़मीन आसमान का फैसले। ज़ाहरी मुमासलत जिन लोगों ने भी देखी तो उनका यही बयान था कि ये तो फरिश्ता होना चाहिए था, या लौला उनज़िला अलैहि कंज़, क्यों इसके ऊपर ख़जाने नहीं उतरते, या क्यों इसके साथ एक मलक और फरिश्ता नहीं आया। तो कुरान ने इन लोगों को जवाब नहीं दिया। हाँ बाज़ जगहों पर यह जवाब आया कि अगर अल्लाह ने फरिश्ते को भी नाजिल करना होता तो उसे भी इंसान की शक्ल में, इंसानी लिबादे और इंसानी लिबास में अल्लाह ताला लेके आता। खुलासे कलाम ये कि ये हमें बात मालूम हुई कि अव्वल ये आजमाइश की जगह है, आजमाइश की जगह है तो मोमिन के लिए आजमाइश दिखाई देनी चाहिए, कहीं पर उसका दिल जो है वो इस्तराब का शिकार हो, टेंशन में आए, स्ट्रेस में आए, मुश्किल में आए, तकलीफ़ है, दर्द है, रंज है। हाँ अच्छे दिन भी गुजरे, चंद दिन अच्छे भी गुजर गए, ये आजमाइश के बाब से था। लेकिन ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो कुरान ने कहा कि वला यहसबन्नल लजीन कफरू, गुमान मत करो कि तुम्हारे लिए ढील यानी मासीत की हमरा नियमतें हों, परेशान कौन है। इसलिए उमर बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के करीबी सहाबी हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और कहा कि या इमाम मैं तो घबराता हूँ कि कहीं अजाब इस्तदराज का शिकार तो नहीं हूँ। तो इमाम ने उससे वजह पूछी कि क्यों, कहा कि मेरे पास सवारियाँ भी बड़ी अच्छी हैं, यानी घोड़ा, खच्चर, ऊंट सारे ही हैं। आज के दौर में आप कह रहे हैं कि प्राइड भी है, मर्सिडीज़, अब हमारी पुरानी मालूमात हैं, आज के दौर के सारे ब्रांड चेंज हो चुके हैं, अब समझें कि एक हवाई जहाज़ भी हमारा है और ग़ुलाम इतने हैं कि उठा के लाते ले जाते हैं उसे, और लिबास भी मैं अच्छा पहनता हूँ, खाने पीने की भी, क्योंकि मालदार शख्सियत थी है। लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का बड़ा करीबी साहबी था, इसे कहा मिन्ना अहलल बैत, आप हम अहले बैत में से होता हूँ। और इसी के ज़रिए से उमर बिन यजीद के इसके ज़रिए से बहुत सारी अहादीस हम तक पहुँची आई इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की। तो इमाम ने फरमाया कि तुम इनसे क्या करते हो, कहा कि मैं कोई इनमें से किसी की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन है माल और दौलत अल्लाह ताला ने इनायत की है, तदबीर मईशत तो इंसान के इख्तियार में है, नेमत है तो नेमत को हासिल करने का भी अल्लाह ताला ने कहा। तो इमाम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी इन चीज़ों से गरज किया है, कहा कि मैं लोगों की मोहताजी से बचता हूँ, जो नेमत अल्लाह ने दी है वसत नेमत दी है, वसत नेमत से इस्तफादा करता हूँ और इबादत के लिए इन्हें खर्च करता हूँ, अच्छा खाता हूँ इबादत के ज़रिए हज़म करता हूँ, अच्छा पहनता हूँ ताकि अच्छे लिबास के साथ अल्लाह की इबादत करूँ, मोमिन के पास अच्छे लिबास के साथ जाऊँ, अच्छी सवारी है इन सवारियों के साथ अल्लाह के घर की तरह सफ़र करता हूँ, मोमिन की तरह सफ़र करता हूँ, इबादत खुदा इस नेमत वसअत नेमत के साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी इबादत में, खैर में, हलाल में इन्हें इस्तेमाल करता हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि यह अज़ाब इस्तदराज नहीं है, यह वसअत नेमत से तुम्हें आज़माया जा रहा है, क्योंकि अज़ाब आजमाइश के मुकाबले में है, आजमाइश है इम्तहान, जो इम्तहान में फ़ेल हुआ उसके लिए अज़ाब है, और जो पास हुआ उसके लिए इनाम क्या, जन्नत है। लिहाजा ये हमने मुलाहिज़ा किया कि इस्तिदराज मा मासियत है। अच्छा, मासियत में भी ये अल्लाह की रहमत है कि फौरन ही नेमत छीन लेता। इधर अज़ाब इस्तिदराज बन सकता है उसके लिए, मसलन अभी हम देखते हैं कि गुनाह हमसे सरज़द हो रहे होते हैं लेकिन फौरन अल्लाह पकड़ नहीं करता। अगर अल्लाह सुबहान व तआला फौरन पकड़ नहीं करता तो इसको बंदे अपने ऊपर, मोमिन बंदा अपने ऊपर फजल समझे, रहमत समझे, अज़ाब इस्तिदराज ना बनने दें। ये जब हम जान लिया तो आए एक दो अहादीस इस हवाले से हम पढ़ लें। और क़ुरान करीम की एक और आयत भी है, उसको इंशाल्लाह ताला अगले दर्स में पढ़ेंगे, सूरह हज आयत नंबर 43 से 48 तक, दिलचस्प और अहमियत की हामिल ये आयत करीमा है। सूरह हज आयत नंबर 42 या 43 से 48 तक है कि वह असहाब मदयन व कुज़्ज़ब मूसा फअमलैतु लिलकाफिरीन। फिर इसके नीचे बयान, खूबसूरत बयान है, लेकिन अलकाफ़ी की चंद अहादीस के ऊपर इख्तिताम करते हैं ताकि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूरानी कलाम से भी हम इस इनवान से मुस्तफीज़ हो जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम की अहादीस में इसका तारुफ तो तोलानी कराया गया है जो इस्तिदराज का हुक्म है, लेकिन यहाँ पे आपकी खिदमत में सिर्फ हम आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बाबुल इस्तिदराज में जो रवायात हैं इनमें से एक दो का बयान आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पहली रवायत मनकूल है। इमाम फरमाते हैं इन्नल्लाह इज़ा अरादा बिअब्दिन खैरा। हम रवायत में दाखिल होने से पहले आपकी खिदमत में फिर इस मतलब का तकरार किया जाए, आजमाइश का बाब जुदा है, नेमत भी आजमाइश है और मुसीबत भी आजमाइश है। नंबर दो, अज़ाब इस्तिदराज का बाब जुदा है। अज़ाब इस्तिदराज में गिरफ़्तार इस तरह से होता है कि पता नहीं लगता। ये कुरान वाज़े कह रहा है मिन हैथुला यालमू, जी असल ख़तरे का बायस है, क्योंकि अज़ाब नाकामी के ऊपर है आजमाइश में, ना कि आजमाइश आई है तो अब उससे लड़ रहे हैं तो अब अज़ाब आ गया। नहीं नहीं, अज़ाब इस्तिदराज तब होगा कि जब नेमतें ही नेमतें हैं। इसलिए जब मुश्किलें मुश्किलें तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़हन नशीन कर लें, दर्दों में, तकलीफ़ों में, गमों में, फ़क्र और गुरबत में, तन्हाइयों में, ये समझ लें कि ये बंदा महफूज है। लेकिन नेमत ही नेमतें हों, खुशहाली खुशहाली हो, दिल मुतमईन है, सारे उससे राज़ी हैं, वो सबसे राज़ी है, घर बार में खूब खाना पीना भी अच्छा चल रहा है, बीवी बच्चे अमूमन बीवी अल्लाह ताला ने रखी इसीलिए कि इसके इंशाल्लाह अजर में इजाफा होता जाए। तो मुख्तलिफ आपने देखा कि मुश्किलात आस पास से इंसान के लिए आती रहती हैं। अज़ाब इस्तिदराज कब बनता है? मिन हैथु ला यालमून, उससे नहीं पता लगेगा, वो अंदर धंसता चला जा रहा है। इसलिए नेमतों की कसरत में परेशान हो, जब दुनिया के ऊपर मुतमईन हो जाए तब परेशान हो। नज़्म बुलाग़ा में भी इमाम फरमाते हैं कि जब तुम्हें दुनिया की तरफ से बिल्कुल आसाइश और आराम और सुकून का एहसास हो उसी वक्त डरो, उसी वक्त घबरा जाओ तुम। तो ये हमारे पास जब बात आ गई तो आए अब हम रवायत पढ़ते हैं, क्योंकि रवायात में काफरीन की वाली सूरत तो है नहीं, चूँकि आइमा अलैहिस्सलाम के असहाब आ रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आजमाइशें नहीं आ रही तो अब परेशान हैं कि अब दरमियाने मरहले में हैं कि नेमतें हैं, मासियतों से तो हम नहीं आ रही रहते, कोई ना किसी हद तक मासियतें भी हैं, तो ये घबरा रहे हैं कि नेमतों की ये कसरत हमें अज़ाब इस्तिदराज के दायरे में दाखिल ना कर दे। तो इससे घबराते हुए इमाम की तरफ रुजू किया करते थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला जब खैर का इरादा किसी बंदे से करना चाहता है, यानी खैर देना चाहते हैं, मतलब आप किसी से खैर का इरादा करें क्या देंगे उसे? माल और दौलत देंगे, नेमात उसे देंगे, घर बार अच्छी दावत उसे करेंगे, उसकी ख़ताओं को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला एक दफ़ा अपने अब्द से खैर का इरादा कर लेता है, खैर उसे पहुँचाना है, तो क्या इमाम फरमाते हैं फ़अज़नबा ज़म्बन अतबाहू बे नक़ीमतिन। तो जब वो गुनाह करता है तो अल्लाह कोई मुसीबत उस पर डाल देता है, गुनाह के नतीजे में मुसीबत सर पर आ जाए तो ये क्या है, अल्लाह ने हमारे साथ खैर किया। माशरे की ज़ुबान में, क्योंकि हमने सुपरमैन वाला एक नज़रिया रखा हुआ है ना, पीर साहब को कुछ भी नहीं होना, तो इस तरह के हमारे नज़रियात हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम का तफक्कुर ये नहीं है। लिहाजा आप खुतबे कासिया भी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर अल्लाह ताला अम्बिया व आइमा अलैहिस्सलाम को गुरबत और फ़क्र और एक बेचारगी की सूरत में ना आजमाता तो लोग آزمائش ایمان و کفر میں گرفتار ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہ ہوتے ہیں. خطبہ قاسیہ ضرور آپ پڑھیں اور اسے سنیں بھی, کیونکہ آڈیو صورت میں موجود ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا جبکہ اونی لباس ہے, گرد بالوں میں پڑی ہوئی ہے, غربت والا ان کا حلیہ ہے, اور یہ شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ, زیورات اور ہیر و جواہرات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تابع ہو جاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, تمہاری حکومت اور ملک باقی رہے گا. تو وہ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے, دیکھو ہمیں کیا کون رہا ہے. تو پھر امام نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہیر و جواہرات کی کانیں دے دیتا, باغات ہی باغات ان کے پاس ہوتے, اور جب وہ چلے آ رہے ہیں تو صحرائی اور جنگلی جانور اور آسمان سے پرندے ان کے ہمراہ آ رہے ہوتے, تو کسی کو شک ہوتا یہ نبی ہیں؟ یا سارے سر تسلیم کر جاتے؟ سارے سر کہتے. تو امام فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر تو آزمائش ختم تھی, نہ جنت نہ جہنم, نہ اجر نہ ثواب, نہ کچھ جزا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے رکھا ہے اسی لیے ہے کہ نبی اور امام جب آئیں گے وہی 313 ہوں گے. دل گھبرائے گا, ایک طرف ایسا لشکر ہے, ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, پر نہ کون کون سے بمبوں کی صورت ہے, یہ بیچارے ایک کلیشنکوف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا. ابھی نہیں سے اللہ نے فتح کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس سے یہ معیار اٹھائیں, رکھیں کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے, مثلا بعض روایات میں آیا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دین کا فہم اسے عطا کر دیتا ہے, وہ رسم سے نکل کے دین سمجھنے کی طرف آ جاتا ہے. طالب علم کے ساتھ بھی یہی ہے. ایک دفعہ طالب علم اقامے کے لیے امتحان بھی دیتا ہے, پڑھتا بھی ہے اور چار استاد کو سناتا بھی ہے, لیکن ایک دفعہ طالب علم سیکھنا چاہتا ہے, فہم حاصل کرنا چاہتا ہے, مطلب کیا ہے, بھاگتا ہے اس کے پیچھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کیا. اسی طرح آپ ادھر دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ اگر عبد کے ساتھ خیر کرے تو وہ گناہ انجام دے گا, کیا ہوگا, مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا. وَيُذَكِّرُهُ الْاِسْتِغْفَارُ, اور اس کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ استغفار کرو. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں استغفار کر رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں تو یہ میرا ہی کوئی کمال ہے, نہیں, اللہ نے یہ توفیق دی ہے, اللہ نے یہ توجہ دلائی ہے, اللہ نے یہ احساس پیدا کیا لیال القدر میں اعتکاف میں بیٹھو یا لیال القدر میں کوئی گریہ زاری کرو, شب داری کرو, خود تمہارا کمال نہیں ہے. اگر تمہارا کمال ہوتا تو انسانی نفس تاریک ہے, وہ تو لذتوں پہ جھکا ہوا ہے, وہ تو درندگی پہ اترنا چاہتا ہے, وہ تو لیال القدر میں بھی موبائلوں سے ہی کھیلتا رہے گا, وہ جمائیاں ہی لیتا رہے گا, دعائے کمال میں بیٹھا زبردست سے جمائیاں ہی لیتا رہے گا, فہم ہی نہیں ہے, استغفار منہ سے نہیں نکلے گا. تو یہ اللہ جس سے خیر چاہتا ہے اس کے منہ سے استغفار کو صادر کرتا ہے, گناہ یاد دلاتا ہے, اور گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کیا کی بارگاہ میں کیا وہ عبد کرتا ہے, بارہ الٰہ میری مغفرت فرما دے, مجھے معاف کر دے. لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کہ یہ کیا ہے کہ خیر, اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا شر, کیونکہ اللہ کے اسماء میں سے بھی ہے نا کہ یہدی من یشا و یضل من یشا, گمراہ کرنے والا بھی اللہ, ہدایت یافت دینے والا بھی ہے. اب ایک عبد ہے کہ کیونکہ جہنم بھی تو کسی سے بھرنی ہے نا, کتنے لوگ خلق کیوں ہوئے ہیں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, بڑی تعداد ہے انسانوں اور جنوں کی کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کے لیے انہیں خلق کیا, انہیں جانا ہی جہنم میں, انہوں نے کام ہی جہنم والے کرنے ہیں. تو یہاں پہ اب اگلا حصہ دیکھیں, وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا, جب ایک انسان شر کا ارادہ کرتا ہے. ادھر یہ شیخ رجب علی خیاط رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے, تذکر کے باب سے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے, تاکہ معلوم ہو کہ گناہ کے اوپر نقمت کیسے آتی ہے, گناہ کرے مصیبت آ جاتی ہے, تاکہ استغفار کرے, رنجیدہ ہو, غم اٹھائے, اللہ کی طرف رجوع کرے. ایک محفل میں تھے تو ان کا بڑا لوگ عزت احترام کرتے تھے, کیونکہ خیاط تھے, درزی تھے, درزی ہوتے ہوئے اس مقام کے اوپر پہنچے کہ ان کے چشم برزخی وہ لوگوں کی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالی کے امر سے جان لیتے تھے. اور آیت اللہ محمدی رائے شہری نے ان کی حالات زندگی پہ کتاب لکھی, اتنی معتبر شخصیت ہے شیخ رجب علی خیاط, عالم نہیں تھے, درزی تھے, لیکن اس مقام تک پہنچے. یعنی ذکر فکر, حرام سے بچانا, مستحبات کو انجام دینا واجبات کے ساتھ, اس نے انہیں اعلیٰ مقام تک پہنچایا. تو محفل میں کچھ ناگواری سی ہوئی. آپ جانتے ہیں محافل میں ناگواری ہو تو جب انسان اٹھ کے جاتا ہے تو ظاہری طور پہ تو چل رہا ہے نظریں جھکا کے, عام بندہ سمجھتا ہے بڑا ماشاءاللہ نیک پاکیزہ بچہ ہے کہ نگاہیں جھکا کے چل رہا ہے, لیکن اندر لڑائی کر رہا ہوتا ہے, उसने मुझे ये कहा तो फिर ये भी चार सुनाता, अच्छा ये है वो है, अब आए तो ये है, इसने अच्छा फलां वजह से ये कह दिया था तो उसके दिल में ये है, तो मुझे क्या पता ये था, अब उसकी असलियत सामने आई है, इस तरह की बातें चल रही होती हैं। तो वो भी अब किसी ने कोई नहीं अदब एहतराम किया उनका, तो दिल तो रंजीदा होता है, तो उस रंजीदगी में कोई तसव्वुर भरा, तो चल रहे हैं तो सामने गधा खड़ा था, उसने तेज़ी से टांग चलाई, टांग चले तो उनके घुटने के पास से कपड़ों को लगती हुई या पेंट को आप समझते हैं लगती हुई गई, और दिल एक धड़क के रह गया। तो अंदर ही अंदर कहा बारे इलाह ये क्या था, तो अंदर से ही फिर आवाज़ उठी, तो फिर वो क्या था, तो कहा उधर मैंने कुछ कहा तो नहीं, तो कहा इधर तुम्हें लगी तो नहीं, हाँ उधर तुमने कुछ नहीं कहा तो इधर लगी हुई तुम्हें कुछ नहीं। अब आपने देखा ये अल्लाह ताला की तरफ से खैर है, क्या होना चाहिए था, उसने बुरा कहा है तो तुम माफ़ कर दो, इंतकाम पे उभर रहे हो तो कहो कि तुम फिरौन हो, तुम कोई यजीद हो कि तुमने इंतकाम लेना और नस्ली इंतकाम लेना है, मारपीट भी अंदर रहे हो, गालम गलौज भी कर रहे हो, बुराई पे भी ठहराया है, सबसे बड़ा गुनहगार भी बना दिया है, उसको तुम माफ़ करो, तुम्हारी ज़ात के ऊपर हमला किया है तो तुम उसे नज़रअंदाज करो, खैर का उससे सोचो, अल्लाह तुम्हारे साथ खैर का सोचेगा। ये है, ये दुनिया में ज़ाबता है, तुम दूसरों के लिए खैर का सोचोगे अल्लाह तुम्हारे लिए खैर का सोचोगे, अल्लाह ताला खैर अंजाम देगा। तुम दूसरों को माफ़ कर दोगे, बड़े से बड़ा गुनाह भी तुमने किया अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम दूसरों पर रहमत का सलूक करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहीम बन जाएगा। इसलिए मखलूक के साथ जो हमारा राबिता है वो राबिता जैसा है अल्लाह ताला आपसे वैसा राबिता बरकरार फरमाएगा। यानी ये मोमिनीन के दायरे में बात हो रही है, लिहाजा इधर आप जुमले पे गौर करें, कहा कि तुम्हें भी वो लगी नहीं है टांग, तो उसने कहा मैंने भी बोला थोड़ी है, क्योंकि गुनाह कब है, जब मुँह से सादिर हो, जब जिस्म से सादिर हो तब गुनाह है ना, सोचों में तो गुनाह नहीं है। तो ये आपने देखा कि अल्लाह जिससे खैर चाहता है उसे क्या है, निकमत में मुब्तला करता है ताकि इस्तिग़फ़ार करे तौबा करे। और फिर आगे क्या जुमला है कि फ़ाअज़नब, जब शर का इरादा कर ले, गुमराह करना है, फ़ाअज़नब ज़म्बन, तो जब अब्द गुनाह अंजाम देता है, अतबाहू बिनिअमतिन, तो अल्लाह उसे नेमत मजीद दे देता है, बढ़ा देता है उसकी नेमतें, लियुनसियहू अलइस्तिग़फ़ार, ताकि इस्तिग़फ़ार को अल्लाह उसे भुला दे, अल्लाह याद ही नहीं दिलाता इस्तिग़फ़ार, वह यतमादा बिहा, और वो इसी के ज़रिए से ओझ हर धर्म और हर धर्मी में आता जाता है, यतमादा बिहा, और मज़ीद उसके वजूद के अंदर शकावत भरती जाती है। वहुआ कौलुल्लाहि अज़्ज़ा वजल, माँ फरमाते हैं ये तफसीर है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस फरमान की, सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून, उन्हें मालूम भी नहीं होगा और हम उन्हें अज़ाब में मुब्तला कर देंगे, किससे, बिन नियाम इंद अलमासी, मासियतें अंजाम दे रहे, नेमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही ताहिरीन।